آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے اور خیرات کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بدعمل کو پسند نہیں کرتے. اس آیت کو اگر آپ ہائی لائٹ کریں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اظہار ہے. ابھی تک ہم نے سود کے معاملے میں تین چیزیں نوٹ کی تھیں. پہلی چیز، حرم اللہ الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا. پھر دوسری چیز، سودی معاملات کے بارے میں ہم نے دیکھی کہ فاولائک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں. اور تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پسند ہے وہ کیا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سود ختم ہو جائے. سود سے پہلی والی آیات میں ہم نے صدقے کے بہت سارے فضائل دیکھے، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے صدقے کو ایک کے بدلے میں 700 یا اس سے بھی زیادہ کر کے دکھاتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان تھوڑی سی بھی اپنے ذہن کے اندر سچائی رکھتا ہے تو اس کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور دین کا مزاج کیا ہے، تو وہ مان جاتا ہے. کچھ لوگ مان جاتے ہیں لیکن سارے نہیں مانتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو مزید بتاتے ہیں کہ دیکھو سود چھوڑ دو. اگر آپ دیکھیے، یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو یا اللہ نہیں پسند کرتا سود کو، وہ یربی صدقات، اور صدقے کو پسند کرتا ہے، تو اس بات سے کھل کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ جس سوسائٹی میں صدقے عام ہوں گے وہیں سے سود ختم ہوگا. آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حالات اپوزٹ ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ صدقہ خیرات تو اتنی خوشی سے نہیں دیتے، اور سود کے لین دین میں ہر وقت اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی ہی پوری نہیں پڑتی. اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کو فیل کریں کہ اس کا اگر ایک پورا سکیلٹن ہو، تو آپ جب تک اس سکیلٹن کے اندر اس کو نہیں ڈالیں گے، آپ کو اس کی خوبی اور خامی کا پتہ نہیں چلے گا. بالکل اسی طرح جس طرح اسلام کا نظام ہر چیز کے اندر آتا ہے، بالکل اسی طرح سے معاشی طور پہ اکنامیکلی بھی اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لیونگ. اسلام چاہتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اپنی ذات پہ لگائے، ضروریات پہ لگائے، ارد گرد والوں پہ لگائے، پھر اس کے بعد جو بچے اس کو غریبوں میں بانٹ دے. غریبوں میں سب سے پہلے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، پھر اس کے بعد فلاحی چیزوں پہ لگائے، سوسائٹی کی فلاح و بہبود پہ لگائے. جس معاشرے میں مال والے اپنی دولت کو اس طرح دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیسے یربی صدقات ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ سوسائٹی کے ہر بندے تک مال پہنچے گا. بیسکس تو پوری ہوں گی نا. جتنے بھی بیچارے غریب سود لیتے ہیں ضروریات میں، وہ اپنی بیسکس نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے لگاتے ہیں. جب کوئی ان کو خود بخود یہ چیزیں دے دے گا، تو ان کو اس قرضے میں پڑنے کی ضرورت نہیں جس کے اندر ان کی نسلیں غلام ہوتی ہیں. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک پھندے سے کچھ لوگ آزاد ہو گئے. آہستہ آہستہ جس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ایک روپیہ، دو، چار، چھ کر کے کچھ نہ کچھ اس کے پاس سیونگز آتی جائیں گی. آپ دیکھیں گے کہ ایک سال دو کے اندر وہ بندہ جو بیگر بن کے پھر رہا تھا، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا، وہ صرف اس نظام کے سرکل میں آنے کی وجہ سے خود کفیل ہو گیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. جب وہ ضرورت مند نہیں رہا، تو جو ضروریات پہ قرضے دے کر لوگوں کو پیسے دیتے لیتے ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو گیا. سمجھ گئے نا، ان کو ضرورت ہی نہیں رہی اب ان کی، اب وہ ہٹ گئے. تو گویا کہ ایک حصہ جو ضروریات والا ہے وہ تو ختم ہو گیا. دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ جب بھی کسی معاشرے میں سود کا نظام عام ہوتا ہے، تو مال کی حوث بڑھتی ہے. ایک بہت ہی اچھے رائٹر ہیں، شیخ محمود حسن، ان کی ایک کتاب ہے مین اینڈ منی، پیسہ اور انسان. تو وہ اس میں ثابت کرتے ہیں کہ تین چیزیں سود کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں. یعنی یہ لکھ لے، جیسے جسم میں کینسر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جسم میں کئی سمپٹمز شروع ہو جاتی ہیں نا، اسی طرح سود کی گلٹی جب جسم میں جاتی ہے یا معاشرے میں ہوتی ہے، تو تین چیزیں آپ کو عام دکھیں گی. نمبر ایک، بے روزگاری، ان امپلائمنٹ ریشو، اسی قدر بے روزگاری بڑھے گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز، انفلیشن، जिसको उर्दू में आप अफराते ज़र कहेंगे। और आसान कर दूं तो फिर क्या है कि अमीर अमीर तर होता जाएगा और गरीब गरीब तर होगा। जिसके पास पहले से ही पैसा मौजूद था वो और अमीर हो जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं था वो और गरीब होगा। और तीसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट, शरह सूद बढ़ेगी। शुरू में अगर कोई छोटे लेवल पे सूद का लेन देन कर रहा था तो सूद के निज़ाम में या इस चक्कर में आने के बाद एक वक्त आएगा कि दिन ब दिन वो इस जाल के अंदर इस तरह से जकड़ता जाएगा कि बढ़ता ही जाएगा, और एक ऐसा सर्कल शुरू हो जाएगा कि जिससे पहले उस अपने बंदे की इकोनॉमी फ्लॉप होगी, आहिस्ता आहिस्ता उस शहर में जब इतने बड़े लोगों के कारोबार चले गए तो उस मुल्क की मईशत तबाह होगी। जब मुल्क की मईशत तबाह होगी ना, तो फिर आप देखेंगे कि उस मुल्क के जो बैंक हैं वो दिवालिए तक चले जाएंगे, और होते होते वो पूरे के पूरा मुल्क जो है वो इस तरह बड़ी चंद ताकतों के हाथ में आ जाएगा। अगर आप कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स को सामने रख लें तो आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये एक रिपोर्ट है मेरे पास कि आज दुनिया में ये जो विशेष सर्कल चला हुआ है, जिसको आप कह लीजिए कि ख्वाहिशों का कर्ज है, बल्कि मैं इसको भी साथ ही रख लूँ कि पहले दौर में लोग ज़रूरियात पे कर्ज लेते थे, आज के दौर में लोग ख्वाहिशात के नाम पे कर्ज लेते हैं। पहले किसी के बारे में भी आप सुनते थे ना, हाय बेचारा मकरूज़ है, क्या दिल में ख्याल आता था। बहुत पीछे ना जाएं, हमें अपना भी याद है, 20 15 20 साल पीछे अगर आप जाके देखें तो लफ्ज़ मकरूज़ बड़ा पिटी फीलिंग देता था। एम आई राइट और रॉन्ग? हाय बेचारे का कर्जा अदा करा दो। कोई मासी है, कोई मजदूर है, कोई ड्राइवर है, कोई बाबा है, मकरूज़ है बेचारा, लिखिए ज़रा इसको। और आज के दौर में क्या है, सेठ भी मकरूज़ हैं, आपको पता है। छोटा तो चंद हज़ारों का मकरूज़ है, लेकिन जो बड़े बड़े कारोबार है उन्होंने बैंकों से कितने लोन लिए हुए हैं। ये जो बैंक करप्सी होती है ये क्या होती है? बड़ी बड़ी फॉर्म, आप दुनिया में चंद नाम लूँ तो आप खुद हिल के रह जाएंगे, लेकिन कहाँ गए आज वो नाम? वो सूद की नज़र हो गए। जिस चीज़ के अंदर सूद आ जाएगा, यमहकुल्लाहु रिबा, ख़त्म कर देगा। मुफस्सरीन कहते हैं जिस चीज़ में सूद का पानी लग जाता है 40 साल के अंदर वो इकोनॉमी डूब जाती है। आप अपनी याददाश्त को थोड़ा सा तेज़ करके देखें, माजी के कुछ बड़े बड़े नाम मोनोपोलीज थी, ब्रांडेड नेम थे हमारे अपने मुल्कों के, एक नाम चलता था उनके पूरे मुल्क में, किसी के पास वो ब्रांड नहीं था। आज आप उनका नाम भी नहीं देखेंगे। रातों रात वो कंपनियां डिमोलिश हुई, सारे घरों वाले बाहर भागे, कोई बच गया तो वो कैद हो गया, और उनके ऊपर बैंकों का लाखों का कर्ज है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, ये चंद बातें मैं आपको सुना देती हूँ, आप पढ़ के, ताकि आप भी देख लीजिए कि ये बातें हम सब जो करते कराते हैं और इनके पीछे फैक्ट्स हैं, और ये मैंने पिछले साल भी पढ़े थे वही हैं। कुछ इसमें चेंजेस हुई होंगी तो हुई होंगी, अदरवाइज नहीं। और आप जाके लेटेस्ट रिपोर्ट्स पढ़नी चाहें तो आप खुद पढ़ सकते हैं। अमेरिका में अब जॉब करने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कारोबार अब सिर्फ 200 बड़ी कंपनीज के पास चला गया। ये है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, के सूद का नुकसान क्या होता है, इन्फ्लेशन। जिसके पास पैसा है वो और पैसा खींचेगा। जैसे आपने एक उर्दू का मुहावरा सुना होगा कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ये कन्वेंशन में मैं उस दिन देख रही थी कि जिनके पास बड़े बड़े सजे संवरे स्टोर होते हैं ना, बड़े बड़े बहुत स्टॉक लेके आते हैं, उनके पास लोग खड़े होंगे, और जो बेचारे थोड़े थोड़े ला के सामान लेके बैठे हैं, अब उनकी कॉस्ट भी नहीं पूरी होती गरीबों की, करें क्या? उन्होंने 2,000 अबाया बेच जाना है, उन्होंने 50 भी नहीं बेचने, फ़र्क है ना? तो बड़ी कंपनियां जो होती हैं ना, इस वक्त पूरी दुनिया का माल जो है ना, जो मनी है, वो 200 कंपनीज के हाथों में आया हुआ है। ये नाम लेते हैं ना, आपने नाम सुनना होगा, अमेरिका की चेन्स हैं वॉलमार्ट सैम्स, ये दो कंपनियां थी और ये दोनों अब एक हैं। और इस वक्त ये चेन देखे तो पूरे मेरा ख्याल टेक्सास में तो है, और इर्द गिर्द भी करते हुए आप जाके देख लें कि इतनी बड़ी बड़ी ये कंपनियां बन चुकी हैं कि कोई एक बंदा इसका तस्वुर नहीं कर सकता। तो वो जब बड़े बड़े नाम आ जाते हैं ना, तो बेचारे छोटे छोटे जो मजदूर थोड़े थोड़े पैसों पे काम करने वाले वो डूब जाते हैं। फिर इस तरह है कि अफ्रीका और एशियन मुल्कों को $1 जो उन्होंने किसी बड़े मुल्कों से कर्जे में लिया, उसके बदले में वो 8 से 9 डॉलर दे चुके हैं उनको, लेकिन अभी भी असल कर्ज उनके सर पे मौजूद है। कंपाउंड, जैसे वो किसी की बात बड़ी कड़वी है लेकिन बात बड़ी सच्ची है, वो कहते हैं कि सूद क्या है, हराम का बच्चा, ये पलता है। जैसे खून मिलता है तो गिल्टी बढ़ती जाती है ना, तो ये कैसा मर्ज है कि जो असल कर्ज होता है वो कोई नीचे दब चुका होता है, और उसके ऊपर वही जो मैंने आपको लफ्जी वजाहत में बताया था, हीप्स एक तह, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, यूं टीला बन जाता है, और वो बेचारा मजदूर जो उसकी कमर टूट जाती है। इसी तरह जब छोटे मुल्क बड़े मुल्कों से कर्जे लेते हैं, ये हमारे यहाँ कितना मारूफ लफ्ज है, बल्कि जिस दिन पाकिस्तान का कोई कर्जा होता था प्रूफ, तो उस वक्त मुल्क में खुशियां मनाई जाती हैं जी, शुक्र है कर्जा मंजूर हो गया। ये भी सुन लीजिए, एक तो लफ्ज है कर्ज जो बड़ी कौमें देती हैं, वो क्या होता है, वो बड़े कौमें छोटे मुल्कों को कर्ज देती हैं, पहली चीज, अपनी शर्तें, कितनी शरह ऑफ सूद, दैट्स इट। देन जब वो उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, तो उस पर एक शर्त क्या होती है कि तुम्हारी पॉलिसीज और तुम्हारे मुल्क के अंदर जो रूल्स हैं वो हमारी मर्जी के होंगे। चूंकि कर्ज ले लिया, वो अपनी सड़कें बनाए ना बनाए, इनको इनको देना मौजूद है, उनको अपने, ये एक मुल्क की रिपोर्ट मेरे पास है कि घाना एक मुल्क है दुनिया का, कहते हैं कि वहाँ की ज़मीन इतनी सरसब्ज है कि जिसको कहें कि सिर्फ आप अगर दाना डाल दें तो वहाँ से फसल काट लें, लेकिन उस मुल्क का अपना हाल क्या है कि 50% बच्चे उनके गज़ा की कमी का शिकार हैं, फूड नहीं मिलता उनको, मरते हैं। क्यों, वजह क्या है कि उनको इजाज़त नहीं है कि अपने मुल्क की ज़मीनों पर वो फूड क्रॉप्स उगाएं, गंदम चावल नहीं उगा सकते क्योंकि ये कैश क्रॉप है, आज काटी कल काट के ख़त्म हो जाती है। उनको मजबूर करती हैं बड़ी ताकतें कि आप कोका, चॉकलेट मेरा और आपका फेवरेट, कोका उगाएं, और वो जब बनता है, उगता है, पकता है, वो पूरे का पूरा बाहर के मुल्क ले जाते हैं, चॉकलेट उगा उगा के गैरों को वो दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की भूख के लिए वो नहीं कर पाते। और युगंडा मुल्क है, 20% बच्चे इनके 5 साल की उम्र से पहले भूख की कमी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। क्या वजह, अफ्रीका के अंदर अगर हर फर्द अपने मुल्क का कर्ज अदा करने के लिए खड़ा हो जाए, हालांकि कहाँ कौमें खड़ी होती हैं, लेकिन बिलफर्ज वो कहें कि जी हमें बड़ी ताकतों के कर्जों से आज़ाद होना है, हम निकलना चाहते हैं, अगर वो खड़ा होना चाहें भी, तो सारे अपनी सारी जिंदगी कोशिश करते रह जाएं, इसके बावजूद 30 गुना से जायद कर्ज बाकी रहेगा। कितने सालों की गुलामी है, ये है असल स्लेवरी आज के दौर की, नेशन स्लेव्स हैं, पूरी गुलामी की जदीद शक्लें आज हमें मौजूद है। थाउजेंड्स एंड मिलियंस के पास इलाज के लिए पैसे मौजूद नहीं है उस मुल्क में, 2 मिलियन बच्चे वहाँ बीमारियों और भूख की वजह से मर जाते हैं, 192 मिलियन बच्चे गजा की कमी का शिकार हैं, 10,000 को पानी भी नहीं मिल सकता, 900 मिलियन ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, और हर 5 में से एक फैमिली के पास घर नहीं, फुटपाथ पे पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं। ये गरीब मुल्कों का हाल है, और इसके बरक्स चंद बड़े ममालिक के कुछ फिगर्स हैं कि उनके पास दौलत कितनी है, नाम नहीं मैं लेती, कुछ मुल्कों के ज़रूरत नहीं है, $11.5 बिलियन सिर्फ एक साल में उस मुल्क के बच्चों को आइसक्रीम खाने पे मिल गए, यानी आइसक्रीम इतने की खाई गई, 1.5 बिलियन अल्कोहल पर इस्तेमाल हुआ, और इसी तरह की एक लंबी लिस्ट है, अगर आप सिगरेट, पानी, जो सुनना चाहते हैं, रिपोर्ट मौजूद है, आप खुद भी जाके देख लें, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह इन्फ्लेशन होता है सूद के नतीजे में, 225 अमीर तरीन इंसान, यानी दुनिया में इस वक्त 200+ कुछ अमीर पर्सन ऐसे हैं कि अगर वो अपनी दौलत का ओनली 4% खर्च कर दें, 4% सिर्फ खर्च कर दें, तो $40 बिलियन जमा हो जाएं, जो सारी दुनिया के लोगों को बेसिक नीड्स, पानी, लिबास, खाना देने के लिए काफ़ी है, ओनली 4%, इतनी दौलत है लोगों के पास, उन्होंने पूरे पूरे घर बना के सोने के भरे में, आप क्या सोचते हैं? 200 अमीर तरीन खानदानों के पास इतना पैसा है कि जो पूरी दुनिया के 41 मुल्कों के पास भी नहीं है। इस वक्त जो मज़े की बात है ना, जो आपके लिए शायद ही बड़ी हैरत अंगेज होगी, कि हम कहते हैं फलां मुल्क सुपर पावर है, अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं ना, आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त किसका मकरूज है? 200 खानदान है यहूद के, अमेरिका उनका गुलाम है, और वो हमारे आपके इर्द गिर्द के मुल्क में रहते हैं। ये अगली दफ़ा जब होगा तो आपको ये बैंकिंग सिस्टम सुनाऊंगी, हाथ ठंडे हो जाएंगे आपके, ये बना कैसे, ये आज कागज़ के नोट और ये जब रुपये, ये रुपया क्या, ये इस्लाम में नहीं था, एक कागज़ पे आप स्टैंप लगा लें वो डॉलर की बन गई, वो 100 रुपये का बन गया, और उसी पे आप रुपये की मोहर, उतनी खर्चा, उतना इंक लगा के आप उसको 1 रुपये देते, ये क्या, ये स्लेवरी है। इस्लाम ने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स रखे थे, पहले दौर में यही होता था, गोल्ड का सिक्का था। अमेरिका में अमेरिकन स्टैम्प होती थी, चाइना में चाइनीज स्टैम्प थी, सऊदीया में सऊदी है गोल्ड, लेकिन उस मुल्क की स्टैम्प थी। नतीजा क्या कि आप अमेरिका से निकले, ऑस्ट्रेलिया तक भी आप जाते हैं ना, आप जिस मुल्क में गए आपका सिक्का, आप जाके वहां के गोल्ड के गोल्ड स्मिथ को बेचेंगे, आपको गोल्ड की वैल्यू के पैसे मिल जाते थे। बात वैसे आप पूरी दुनिया घूम के आते थे, एक ही वैल्यू थी आपके पास, ये पता था कि अमेरिकन सिक्का है लेकिन वैल्यू उसकी गोल्ड की थी। इसी तरह चांदी की थी, पूरी दुनिया एक थी। रातों रात आपको पता, ये नोट छपे थे, मैंने ये सुनाई जब हिस्ट्री पिछले साल, तो कई दिन तक इसके ऊपर हमारी क्लास में बड़ा इजतराब रहा कि इतना हम बेवकूफ बन चुके हैं। जिस दिन इस्लाम का निजाम आप लाएंगे इकोनॉमिकल, सबसे पहले ये मेरे और आपके कागज के नोट फटेंगे। और चले नोट की तो कोई वैल्यू है, ये जो चेक बुक लेके फिरते हैं और ये जो क्रेडिट कार्ड लेके फिरते हैं, कल के सबक सारे क्रेडिट कार्ड पे है, जिसको सुनने आ जाए। ये नहीं, आप और मैं तो सिर्फ इस गम में कि मैचिंग स्वेटर कोई नहीं, जूती कोई नहीं। अच्छी जो बात है, हमारी नस्लें इस वक्त जिसको कहना चाहिए कि भेड़िए के मुंह में आई नहीं है, इस तरह के हालात हैं। मॉडर्न गुलामी की ये शक्ल है कि ये जो बड़े कंपनीज होती हैं, ये पहले लोगों को कर्ज देती हैं, फिर उनके मुल्कों की पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करती हैं, फिर वो ज़रा सार उठाने लगे ना तो उनको धमकियां देती हैं, फिर अपने माल को बचाने के लिए ये दो मुल्कों को आपस में लड़ाते हैं। असलहा जब बन जाता है फिर उसको बेचना है, तो फिर दो मुसलमानों को जाके औस और खजरज की तरह लड़ाते हैं और कहते हैं अब हमारे हैं, तो पैसे कोई नहीं होते, कोई बात नहीं, आदत तुम्हें कर्जों पे देते हैं। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले मुझे कोई बहुत ही छोटी शौरी, उम्र भी इतनी नहीं थी, मुझे आज भी वो अखबार की हेडिंग याद है जो बचपन में पढ़ी थी, पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 मिलेंगे, तो मुफ्त मिलेंगे नहीं, वो ये था कि वो तैयार हो गया कि आपको अपने खराब जो भी अब मेरी हैबिट किए हुए वो आपको जहाज हम बेच देंगे, तो पाकिस्तानी कौम इतनी खुश हो गई थी इस पे कि हमें F-16 ना मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर, और उसकी कितनी भारी कीमतें। ये तो कर्ज है ना। अब एक इससे भी दिलचस्प बात सुन लें, जो एड का लफ्ज़ हमारे मुल्कों में कितना आम है, पाकिस्तान को इतनी एड मिलेगी, उसको इतनी एड मिलेगी, मिलती है ना गरीबों को। वो कहते हैं ना कि नाम भी अपना बड़ा कर लेंगे, बड़ी वाहवा करेंगे जी ये कितनी एड देते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? $1, मिसाल है सिर्फ एक मेयार बनाने के लिए, $1 जब किसी मुल्क को एड के तौर पे मिलता है, मिसाल ले लीजिए पाकिस्तान को अमेरिका से $1 एड मिलती है, उस $1 के अमेरिका में आने के बाद उस पूरे प्रोसेस को जिसमें वो एड का चक्कर चल रहा होता है, उनके वर्कर्स, उनकी कंपनी, जो भी उनके हायर लोग हैं ना, उस एक में से 90 पैसे जो कह ले वो उस मुल्क के वर्कर्स की तनख्वाहों और उनके रहने पे लग जाते हैं। बात समझ रहे? चले 100 की बात कर ले, 1 रुपया ज़रा ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, कि जब किसी गरीब मुल्क को किसी बड़े मुल्क से 100 डॉलर की एड मिलती है ना, तो उस 100 में से 90+ डॉलर जो हैं वो उस मुल्क के सारे जो वर्कर और उस एड के सिलसिले को चलाने वाले और हिसाब किताब रखने वाले उनकी तनख्वाहों पे वापस उस मुल्क को मिल जाता है। 10 पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को मिलेंगे। अब आप बताइए कि जब ब्यूरोक्रेट्स के पास वो 10 पैसे पहुंचे, तो असल में गरीबों और मुल्क को क्या मिलना है? वो भी अगर ईमानदार होंगे तो 10 मिलेंगे ना, यानी वही बात है कि हम देंगे भी तुमको और खाएंगे भी तुमसे। और आज हम इतने ना समझ बन के ऐसी चीज़ों पे खड़े हैं कि वल्लाही मुझे तो जब ये बात मैं सोचती हूँ, गौर करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि हमारी 1 या 2 जनरेशन के बाद क्या हाल होने वाला है। आज ही देखिए, दौलत ने हमें ऐसे बेवकूफ़ बना दिया कि हम सिर्फ अपने जाती कर्जे दूर करने के लिए सारा सारा दिन मशीनों की तरह काम करते हैं। वीकडेज, वीकेंड, बच्चे, बेटियां, लड़के, लड़कियां, क्या आज के मुसलमानों का ये हाल नहीं है? खुद मिटे पड़े हैं सिर्फ इस गम में किस्तें देनी। क्या कोई पैसा, 1 ही पाउंड की मेरे हाले दूध की बॉटल है, इधर भी कोई 1 पाउंड बड़ी चीज़ नहीं है। आप 1 पाउंड का दूध ले लें, मेरा ख्याल 1 हफ्ता चलता है, और आप आज भी 1 ब्रेड ले लें, चले 2 पाउंड की होगी, आज भी बेसिक खाना महंगा यहाँ भी नहीं है इतना, जो यहाँ कमाता है उसके लिए यह महंगा नहीं है। बात वाजह है ना, आज किस चीज़ की दौड़ धूप लगी हुई है हमारे मर्दों को और हमें, हर चीज़ में किस्तें, हर चीज़ में सूद, हर चीज़ में हम अपनी जान के ऊपर इतने इतने बड़े कर्जे। कर्ज पे बात सारी कल होगी, जो भी जहनों में सवाल हैं वो कल तक रोके रखें, ये मजमून कल पूरा होगा जो आज शुरू हुआ है। लेकिन याद रखिए कि अल्लाह का ये वादा बिल्कुल सच्चा है कि यमहकुल्लाहु रिबा, सूद मिट जाता है, और सूद के मिटते मिटते मैं कहती हूँ कि वो बंदा मिट जाता है जिसके सरों पे कर्ज होता है इतना बड़ा। अल्लाह ताला कहते हैं देखो बड़े बड़े मुल्कों का क्या हाल हुआ। आपको पता है कोरिया किधर चला गया, रशिया किधर चला गया। आप सोचते हैं कि ये सारी पॉलिटिक्स है, नहीं, इसके पीछे मईशत है। आप सोचें कि एक शीशे का महल हो, बहुत खूबसूरत चमकता धमकता, सिर्फ एक पत्थर जब उसको लगता है ना तो वो क्रिस्टल जो है ना यूं बिखरने लगता है। बिल्कुल आज की सूदी निज़ाम जिसमें मैं और आप जी रहे हैं इसका यही हाल है। अल्लाह कहते हैं वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फार नसीम, अल्लाह किसी ना शुक्रे और गुनाहगार को पसंद नहीं करता। कौन है यहाँ कफ्फार और नसीम, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाने के लिए इस तरह से अल्लाह के इतने बड़े बड़े हुक्मों को पीछे करके अपने आप को नाफरमानियों में डालता है। अल्लाह को किसी पे गुस्सा नहीं आता, काफिर कुछ भी करे, एथियस्ट कुछ भी करे, हु केयर्स, अल्लाह का सारे का सारा गज़ब उम्मते मोहम्मदिया पे। ये कफ्फार और असीम वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने अपना नबी दिया, अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर वाली आयतें जिनको दी, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम की बातें की, जिनको बताया कि लोगों पर मल हयात तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है, कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिर इस सबील, जिस नबी ने कहा लोगो इस दुनिया में ऐसे गुजरो जैसे तुम मुसाफिर हो, जैसे एक अजनबी हो, राह चलते हो। ये उस उम्मत पे अल्लाह का गजब है जिनको नबी ने कहा कि अगर तेरी जिंदगी में सुबह हो जाए तो शाम का फिक्र ना कर, और शाम हो जाए तो सुबह का फिक्र ना कर, और अपना नाम जिंदों में नहीं मुर्दों में रख। जब मुसलमान भी उसी रास्ते पे चल पड़ता है जिस पे काफिर पड़ता है तो अल्लाह का गज़ब आता है। अल्लाह काफिर को छोड़ देता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि उसने अल्लाह से कोई वादा नहीं किया कि मैं तेरी मानूंगा। उसको तो अल्लाह दुनिया में और देता है, और खाओ और पियो, लेकिन मुसलमान को अल्लाह ताला इस तरह से पकड़ता है। आज आप देखिए कि जिन मुआशरों में भी ये सारे निज़ाम हैं आप देखेंगे बरकत ख़त्म, आसूदगी ख़त्म, अमन और इत्मीनान का नाम निशान नहीं है। ऐसे सोसाइटीज़ में दूर से देखें तो बहुत कुछ दिखता है आपको, आप अपने आप पर लेके सोचिए। आज भी जब आप पाकिस्तान जाते होंगे तो दो चार तो ज़रूर आपके ख़ानदान के जवान बच्चे कहते होंगे फुफ्फो मुझे बाहर बुला लो, खाला मुझे बाहर बुला लो, कितना शौक़ रखते हैं लोग। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इन मुल्कों में आके देखते हैं तो आपको वाकई लगता है कि यह ऐश है। हम तो ऐश तब करते हैं जब अपने मुल्क जाते हैं, ऐसे लगता है ज़िंदगी दीवानी, खाओ पियो मौज मस्ती। जो 2 हफ्ते का हमारा ट्रिप होता है ऐसे लगता है कि शायद हम किसी जन्नत से होके आए हैं। जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जो मौज मस्ती अपने मुल्कों वाले कर रहे हैं यहाँ के बेचारे कर सकते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक फैमिली वाला बंदा मेरा नहीं ख्याल के जो बाइज्जत तरीके से कमा रहा है वो बाहर जाके एक वक्त में पूरी फैमिली के साथ खा पी के खुल के आ जाए, इतनी महंगाई। लेकिन आप देखिए कि लोग कैसे खुश होते हैं, दिलों का चैन ख़त्म, नफसियाती बीमारियाँ, साइकोलॉजिकल बीमारियाँ, ये सब बढ़ती, ये है यमहकुल्लाहु रिबा, यानी नस्लें तबाह हो जाती हैं। बाहर सब दिखता है लेकिन अंदर उसके बिल्कुल कुछ नहीं होता। आप देखिए कि इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई शख्स किसी एक ऐसी बस्ती में जाए कि जहाँ उसको बहुत बड़े बड़े लोग दिखे, खूब खाते पीते मोटे ताज़े, कि वाह यहाँ के लोग बहुत सेहतमंद हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उस बस्ती से बाहर निकले तो उसको एक छोटी सी बस्ती और दिखे कि जहाँ लोगों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, लाशें हैं, ये बिल्कुल ऐसे कंकड़ियल लोग हैं। पूछे क्या हुआ, तो वो कहे कि असल में यहाँ भी बहुत सेहतमंद लोग थे लेकिन ये जो बड़े लोग जिसको आप पहले मिल के आए ना, ये आदमखोर हैं, ये उस बस्ती के लोगों को खा गए। तो आप बताएं कि क्या आप पहली बस्ती के जो लोगों को देखा उनको खुशकिस्मत कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, आप कहेंगे कि इस बस्ती वालों ने दूसरी बस्ती वाले लोगों का खून निचोड़ लिया। आज दुनिया में ये हो रहा है, जब जहर लगता है ना तो एकदम स्वेलिंग हो जाती है। किसी को स्वेलिंग हुई हो तो लोग कहेंगे आपकी सेहत कितनी अच्छी हुई है, लेकिन उसको पता है कि मैं बीमार हूँ। बाज़ दफ़ा बीमारियों में ब्लड एनिमेशन जब होता है, एनेमिक लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, किडनीज की बीमारियाँ होती हैं लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल सूद के निज़ाम का यही हाल है कि ज़ाहिर ये फूला हुआ ग्लैमरस पम्पी ग्लैमरी लेकिन अंदर से बिल्कुल खून नुचड़ा हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो इस तरह के काम करके अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, जो ज़बरदस्त तरीके से दोबारा इन्हीं चीज़ों में अपने आप को लाते हैं, ज़ुबान से 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वर्द कर ले लेकिन अगर इनके निज़ाम हयात में अल्लाह के तरीके नहीं हैं तो ये कफ्फार और असीम लोग हैं। इनको किसी चीज़ की अल्लाह से अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इनको अपनी फिक्र करनी है। और आप वो सारे मुआशरे देख सकते हैं जो आज दिख रहे हैं,
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم